लास्ट संडे मैंने आपसे अर्ज की थी कि इंशाल्लाह माह रमजान के बारे में गुफ्तगू करेंगे। इसके अंदर बात यह है कि अरबी में इसे शहर रमजान कहते हैं और माह सयाम भी कहा जाता है। शहर रमजान में दो लफ्ज़ हैं, एक शहर और दूसरा रमज़ान। शहर का लफ्ज़ शोहरत से निकला है, ऐसी चीज़ जो मशहूर हो या ऐसी चीज़ जो इस तरह से बयान हो कि साफ पता उससे चले कि ये फलां चीज़ से फलां चीज़ है। और लफ्ज़ रमज़ान असल में रम्स से निकला है। रम्स वर्ब है, इसका मतलब है जला देना। और रम्स से एक लफ्ज़ है रमज़ा, इसका मतलब है गर्म पत्थर। चूंकि रमज़ान ऐसे मौसम में रोज़े मुसलमानों पर फ़र्ज किए गए थे जब गर्मी थी और अरब के सहरा की गर्मी कयामत की होती है, इस कदर शदीद तपिश होती है कि ऊँटनी का बच्चा झुलस जाता है। तो उस नस्बत से इसे रमज़ान कहा गया। आज से 1400-1500 साल पहले अरब की मैशियत जो थी उसमें ऊँट को बहुत अहमियत हासिल रही है और ऊँटनी का बच्चा बड़ी वैल्यूएबल चीज़ थी अरब लोगों के लिए, ख़ासतौर पर बद्दू के लिए। इसलिए उसको प्रोटेक्ट बहुत किया जाता है, उसका ख्याल रखा जाता है। वो चूंकि झुलस जाता है गर्मी, उस नस्बत से इसका नाम रमज़ान रखा गया। तो यूं ही शहर रमज़ान कहलाता है। और माह सयाम, सयाम के बारे तो आप सबको मालूम है, किसी चीज़ से रुक जाना, किसी चीज़ का तर्क कर देना सयाम कहलाता है। और माह महीने को कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे शुरू में हर महीने 3 रोज़े फ़र्ज किए गए थे और 10 मुहर्रम का एक रोज़ा, और उसके बाद फिर जंगे बदर से एक माह और कुछ दिन पेशतर मुसलमानों पे 30 रोज़े फ़र्ज किए गए। और बदर, जंगे बदर जिस महीने में हुई वो रमज़ान था और मुसलमानों का पहला माह रमज़ान था वो, जिसमें जंगे बदर वाक़ई हुई थी। कुरान पाक में रब ताला ने जब भी मुसलमानों को मुखातिब किया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, इन अल्फाज में मुखातिब किया गया मुसलमानों को। ये अल्फाज अरबी में तंबीह के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं, या अय्युहल्लज़ीना, और निदा देने के सिलसिले में भी इस्तेमाल होते हैं ये अल्फाज। इसीलिए जनाब हजरत जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह साहब ने फरमाया था कि इस निदा से इबादत की कुल्फत और मशक्क़त लज्जत में बदल जाती है। तो रोज़ों के सिलसिले में रब ताला ने मुसलमानों को मुखातिब करते हुए फरमाया कि तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जैसे तुम से पहले कौम पर फर्ज किए गए थे। अगर हिस्ट्री को तहकीक की नजर से देखा जाए तो बनी नौ इंसान की पूरी तारीख में आने वाली जितनी कौमें हैं उन सब पर रोजों के फर्ज होने का पता चलता है। हत्ता के हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर भी रोजे फर्ज किए गए थे। वो इस तरह कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से जमीन पर रवाना किया गया तो यहां सूरज की तपिश से हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जिल्द झुलस गई थी। एक दिन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ लाए और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि आपकी जिल्द झुलस गई है, इसकी रंगत स्याह हो गई है। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं, उससे आपकी जिल्द की रंगत दोबारा सुर्ख सफेद हो जाएगी। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से ये अर्ज किया कि आप हर चांद के महीने की 13, 14 और 15 तारीख को रोजे रख लिया कीजिए। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब पहला रोजा रखा 13 तारीख चांद की, तो आपकी जिल्द की रंगत 1/3 सफेदी की तरफ माइल हो गई। अगले दिन जो रोजा रखा तो आधी से ज्यादा जिल्द की रंगत स्याही से दूर हो चुकी थी और तीसरे रोजे के बाद जिल्द फिर पहले जैसी सुर्ख सफेद हो गई थी। और इसी निस्बत से चूंकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जिल्द की रंगत स्याह से सफेद हुई थी, इसलिए इन 3 दिन के रोजों को अय्याम बैज के रोजे कहा जाता है। यूं हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर पहली बार रोजे फर्ज हुए थे। वहां से ये सिलसिला फिर चला और बाद में आने वाली तमाम कौम पर रोजे फर्ज होते चले गए। इन्हीं 3 रोजों के सिलसिले में हजरत अली करम लवाजहो ने एक रवायत बयान की है। एक दिन हजरत अली करम लवाजहो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और सलाम अर्ज किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दे के फरमाया कि अली, तुम्हें हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सलाम कहते हैं। और उसके बाद फरमाया कि अली, मेरे करीब आओ, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तुम्हें कुछ कहना चाहते हैं। जब हजरत अली करम अल्लाहु तशरीफ ले गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब, तो आपने फरमाया कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का कहना यह है कि मैं तुम्हें 3 रोजे बता रहा हूं। पहले रोजे का सवाब 10,000 साल के रोजों के बराबर है और दूसरे दिन के रोजे का सवाब 20,000 साल के रोजों के बराबर है और तीसरे दिन के रोजों का सवाब 30,000 साल के रोजों के सवाब के बराबर है। तो हजरत अली करम अल्लाह वजह ने पूछा कि हजूर, वो 3 रोजे कौन से हैं? तो फरमाया कि वो 3 रोजे चांद के महीने की 13, 14 और 15 तारीख के हैं। इसी तरह जो 10 मुहर्रम का रोजा था जो शुरू में फर्ज हुआ था, लेकिन जब माह रमजान के रोजे फर्ज कर दिए गए तो ये रोजे फर्ज की कैटेगरी से हटा के नफली रोजों में डाल दिए गए। तो दसवीं मुहर्रम का रोजा जब रखने की बात हुई तो मुसलमानों में से सहाबा कराम में से एक साहब ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहूदी भी 10 मुहर्रम का रोजा रखते हैं। तो आपने फरमाया कि फिर तुम 9 और 10 मुहर्रम के दो रोजे रख लिया करो, क्योंकि मुसलमान किसी तौर भी किसी दूसरे मजहब के पैरोकार से मुशाबे नहीं होता। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, और ये 9वीं का रोजा बताया गया वो इसीलिए था कि हम में और यहूद में फर्क हो जाए। वो भी 10 मुहर्रम को रोजा रखते हैं, और मुसलमान अगर 10 मुहर्रम का रोजा रखेंगे तो वो उनसे मुशाबेत हो जाएगी। फिर 9वीं मुहर्रम का रोजा भी फरमाया गया। ईसाइयों पर भी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर मुसलमानों ही की तरह से माह रमजान के रोजे ही फर्ज किए गए थे, और 30 ही रोजे थे, 30 और 29 जो चांद के महीने की मुताबिक हो जाएंगे। लेकिन गर्मी की शिद्दत से घबरा के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद उनके पैरोकारों ने जहां और मामलात में सहूलत ढूंढी, उसी तरह रोजों में भी सहूलत ढूंढी। तो ईसाइयों के उलेमा ने और उनके दूसरे मजहबी अकाबरीन ने इस बात पर इज्तिहाद किया कि चूंकि गर्मी के रोजे रखने से इंसान की सेहत पर बुरा असर पड़ता है और कामकाज में रुकावट होती है, इसलिए रोजे तो 30 ही रखे जाएं, लेकिन इसका वक्त ऐसा मुकर्रर कर दिया जाए जो मौसम बहार हो, गर्मी और सर्दी का दरमियानी मौसम, वो मौसम बहार होता। तो यूं इस बात पर उनका इत्तेहाद हो गया कि रोजे माह रमजान से हटा के बहार के मौसम में ले आए जाए, और उसे सने ईस्वी से मुंसलिक कर दिया। ये सहूलत तो ईसाई उलमा और अकाबरीन ने दी, लेकिन इसके साथ ये शर्त कर दी कि रोजे 30 के बजाय 40 हो जाएंगे। उसी दौर में जो क्रिश्चियन बादशाह था, उसने एक मन्नत मान ली कि अगर रब ताला मेरा ये काम कर दे तो मैं एक हफ्ते के रोजे और रखूंगा। तो यूं ईसाइयों के यहां रोजे 40 से 47 हो गए, क्योंकि उसकी वो मन्नत पूरी हो गई। इस बादशाह का इंतकाल हुआ, उसके बाद आने वाले बादशाह ने फिर किसी काम के लिए एक मन्नत मान ली कि मैं 3 रोजे का इजाफा कर दूंगा। वो मन्नत पूरी हुई तो उस बादशाह ने 3 रोजे और बढ़ा दिए। यूं ईसाइयों के यहां रोजों की तादाद 50 हो गई। तो ईसाइयों पर भी मुसलमानों ही की तरह रोजे फर्ज किए गए थे, इसीलिए रब ताला ने जब मुसलमानों को रोजे के बारे में हुक्म दिया तो ये फरमाया कि तुम पर भी रोजे उसी तरह फर्ज कर दिए गए जिस तरह से तुमसे पहली कौमों पर फर्ज किए गए थे। वो इसको रेफर कर रहा है रब ताला। ये तो लफ्ज रमजान है, इसके बारे में एक रवायत और मिलती है। हमारे कुछ बुजुर्गों का यह ख्याल रहा है کہ رمضان اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ روایت ضعیف ہوتی چلی گئی. یہ نقطہ میں آپ سے کلیئر کرنا چاہتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کبھی کسی وقت آپ کا واسطہ اس روایت سے پڑ جائے، آپ کو کنفیوژن نہ ہو. یہ روایت ایک زمانے میں بہت اسٹرانگ رہی، لیکن پھر چونکہ اس کو سپورٹ نہیں کیا جا سکتا کسی دلیل کے ساتھ، اس لیے یہ کمزور ہوتی چلی گئی وقت کے ساتھ ساتھ یہ روایت. البتہ وہ چونکہ عربی لغت اور گرامر کے ذریعے سے ثابت ہوتا ہے لفظ رمز اور اس کے بعد رمزہ، تو وہ زیادہ قرین قیاس ہے کہ اس لیے رمضان کا مہینہ اس کا نام ڈال دیا گیا. مجھے احساس ہے کہ آپ کو بڑی بے چینی سے شب قدر کی پڑھائی کا انتظار ہوگا، لیکن وہ میں تو بتانا چاہتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ معاملات میرے ہاتھ میں نہیں کہ مجھے ڈیلے کر لیا جاتا میں کیا کروں. سوائے اس کے کہ یہ عرض کروں کہ میں نیکسٹ سنڈے آپ سے عرض کر دوں گا، اور ویسے بھی زیادہ اچھا یوں رہے گا کہ اس کے فوراً بعد شب قدر، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ اس کے بعد شب قدر آئے گی، شب قدر تو 21 اور 29 کے درمیان کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ 27 رات کو شب قدر ہوتی ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے ویسے، یہ میں آپ سے عرض کر دوں. چونکہ پرانی باتیں ہیں تو اس کے بارے میں کہہ دینا شاید قابل گرفت نہیں ہوگا. آج سے کئی سال پہلے 21 رات بھی شب قدر آئی ہے، اور پچھلے 10 سال میں 23 رات 3 بار شب قدر کے طور پہ آ چکی. 25 رات کا مجھے یاد نہیں کہ آئی ہو، 27 آئی ہے. تو وہ چینج ہوتی رہتی ہے ہر سال. مدینہ منورہ میں تو رات پہچانی جاتی ہے، اگر اللہ نے اپنا خاص علم نہیں بھی عطا کیا تو بھی وہاں پہچانی جاتی ہے. ایک عجیب سا نور برستا ہے اس رات میں. وہ عجیب سا میں یوں کہہ رہا ہوں کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ میں نور دودیا چمکدار روشنی کو کہا جاتا ہے، لیکن ایک نقطہ میں آپ کے ساتھ یہاں کلیئر کرتا چلوں کہ رب تعالی کا نور یا رب تعالی کے ارد گرد جو نور ہے وہ ایسی سیاہی ہے جس میں سفیدی کی آمیزش ہے اور وہ چمکدار ہے. تو سیاہی اور سفیدی کا امتزاج جس میں چمک ہو وہ نور برستا ہے اس رات، اور خاص طور پر مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور اس کے ارد گرد کے علاقے میں وہ نور بڑا ویزیبل ہوتا ہے، تو پہچانی جاتی ہے رات. یہ پہچان وہاں کی بتا سکتا ہوں، یہاں بتا کے میری گردن خود پھنس جائے گی. تو 27 رات سے پہلے فوراً پہلے اتوار آئے گی، اور اس دن کوشش کروں گا کہ میں لیٹ نہ ہوں اور آپ کو شب قدر کے بارے میں بھی عرض کر دوں گا کچھ جو کچھ مجھے معلوم ہے تھوڑا بہت آتا. اور اس رات میں مقبول عبادات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اور اولیاء اکرام کے معمولات کے مطابق وہ میں آپ سے عرض کر دوں. ویسے تو رب تعالیٰ کے ساتھ جیسا وہ ہے مہربان اور درگزر اور متواضع، اس کی صفات کے پیش نظر، اور دوسرا کہ وہ دلوں کے بھید جانتا ہے، ظاہر اور پوشیدہ چیزوں سے واقف ہے. تو وہ عبادات کے الفاظ کو تو شاید نہیں دیکھتا، وہ انسان کے اخلاص کو دیکھتا ہے کہ کس خلوص اور کس جذبے کے ساتھ کوئی انسان اس کی عبادت کر رہا ہے. رب تعالیٰ کو اپنے وہ بندے بڑے عزیز ہیں، ایسے بندوں کی عبادت بھی قبول فرماتا ہے جو قطعی طور پہ امی ہیں، قرآن پاک نہیں پڑھے اور کسی وجہ سے یا تو نماز انہیں آتی نہیں یا ان کے ذہن سے محو ہو گئی ہے، اور وہ بڑی محبت اور خلوص سے اللہ کے حضور جھکتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور نماز میں بجائے تلاوت کرنے کے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے چلے آتے ہیں. لیکن ان کے خلوص اور ان کی محبت کی وجہ سے رب تعالیٰ اور اپنی متوازو اور وزادار صفات کی وجہ سے اور دلوں کے راز سے واقف ہونے کی صفت کی وجہ سے ان کی عبادت کو بھی قبول کرتا ہے. اور بسا اوقات وہ بڑے بڑے صاحب علم لوگوں پر بازی لے جاتے ہیں، وہ جیت جاتے ہیں اسی وجہ سے کہ ان کا اخلاص اور ان کی محبت اور ان کا جنون اور عشق اللہ کے لیے بڑا شدید ہوتا ہے. صاحب علم سے بازی لے جاتے ہیں، رب انہیں نواز دیتا ہے، ان کو سینے سے لگاتا ہے، ان کو پیار کرتا ہے، ان کو اپنے قربت عطا فرما دیتا ہے، اپنی دوستی عطا کر دیتا ہے. اہم یہ نہیں ہے کہ ہم نے کیا پڑھا، کن لفظوں میں رب کو پکارا، اہم یہ ہے کس جذبے سے پکارا، اس کے اندر اخلاص کتنا تھا اور عشق کی شدت کیا تھی، کس درجے کی شدت ہے، وہ اہم ہے. رب کو وہ عزیز ہے. لیکن آپ کی تسلی کے لیے میں پھر بھی دعائیں اور کوشش کروں گا کوئی دعائیں اور عبادات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. میری آپ سے ریکمینڈیشن یہ ہوگی کہ الفاظ کے پیچھے نہ دوڑیے، بلکہ دل میں رب کا عشق جگائیے، اور اس عشق میں ڈوب کر آپ اسے کسی نام سے پکار لیجئے، اسے کسی انداز میں پکار لیجئے، انشاءاللہ تعالی وہ جواب دے گا. اور وہ ٹوٹی پھوٹی عبادت ہی کو قبول فرما لے گا. اس کی دو مثالیں میں عرض کر سکتا ہوں آپ کی خدمت میں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی زبان صاف نہیں تھی الفاظ کی ادائیگی میں، لیکن آپ کی دی ہوئی اذان ہی سب سے زیادہ عزیز ہوئی. پھر ان مجذوبوں کو دیکھیے جو اللہ کے عشق میں اتنے کھو گئے کہ ان کے ہوش و حواس ختم ہو گئے، ان کی زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ کو پورا کرتا ہے رب اپنی رحمت کے صدقے. اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رب کو اتنا چاہا کہ اپنی ذات کو ختم کر دیا، اس کے لیے رب اس کا انعام ضرور دیتا ہے. اہم یہ ہے کہ آپ رب سے عشق کیجئے، اور پھر دیکھیے کہ اللہ آپ کی پکار کا جواب کتنی جلدی دیتا ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے امید ہے کہ میں بر وقت حاضر ہو جاؤں گا آپ کی خدمت میں.